आगे अहले जहन्नुम की फरियादें हैं 47 से 50 में, जहन्नुम में जाने के बाद ये झगड़ रहे होंगे, वइज़ यतहाज्जूना फिन्नार, झगड़े झगड़े झगड़े। याद रखिए वो घर जहन्नुम बन जाता है जहाँ झगड़े हों, मियाँ बीवी के झगड़े, माँ बाप के साथ बच्चों के झगड़े, मुलाजिमों के झगड़े, जहन्नुम का एक बड़ा अजाब झगड़ों का होगा। इसके बरक्स अल्लाह ताला अहले हक की मदद ज़रूर करेगा। 51 से 57 में आपको ये मैसेज मिल रहा है, इन्ना लनंसुरु रसूलना, हम बेशक ज़रूर मदद करते हैं अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए, दुनिया की ज़िंदगी में भी और उस दिन जिस दिन गवाहियाँ कायम होंगी। क्या पता चला, हक पे रहिए, अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। और ये जुमले अपने दिल पे लिख लें, आप सच्चे हैं ना, चुप कर जाए, रिलैक्स्ड, अल्लाह खुद ही आपकी बेगुनाही साबित कर देगा। फिर आयत नंबर 58 से 65, अल्लाह का हुक्म है कि मुझे ही पुकारो। सूरत मोमिन जो है ना, इसका वन लाइनर आपको मैं टॉपिक दूँ ना, तो शिर्क फे दुआ। और अफसोस के साथ कहूँगी कि इंडो पाक में, यानी बरेसगीर पाक और हिंद में, सब कॉन्टिनेंट में सबसे फेमस मशहूर शिर्क दुआ का शिर्क है, क्योंकि दुआ इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है, इया का नाबुदू। तो दुआ तो सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह ही दुआ कबूल करता है और अल्लाह से ना मांगने वाले से अल्लाह नाराज़ होता है। हदीस सुन लीजिए, मुसनद अहमद 5585, अबू सईद इसके रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मुसलमान ऐसी दुआ करे जिसमें गुनाह या कतई रहमी वाली बात ना हो, तो अल्लाह ताला इसको तीन में से एक चीज़ अता करता है। नंबर एक, या तो दुआ जल्दी जल्दी कबूल हो जाती है, यानी जो मांगा वो मिल गया, या इसकी दुआ को आखिरत के लिए ज़खीरा कर लेता है, या इसके बकदर उससे कोई बुरी चीज़ दूर कर देता है। साहबे कराम ने कहा, फिर तो हम बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। आपने फरमाया, अल्लाह बहुत ज़्यादा अता करने वाला है, यानी तुम मांगते मांगते थक जाओगे, वो देते देते नहीं थकेगा। इस वक्त भी अपने लिए कुछ मांगिए, अगर तो फौरन मिल गया तो हम कहते हैं हाय कितना अच्छा था, हालांकि आपको पता है हदीस में ये सबसे हल्का दर्जा होता है। सबसे बेहतरीन क्या है कि अल्लाह आपके आखिरत के दर्जे बुलंद करे। आप पे कोई बीमारी तकलीफ आ रही थी, आपने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे बच्चा दे दे, बच्चा नहीं मिला लेकिन बीमारी नहीं आई, तो फ़ायदा हुआ कि ना हुआ। फिर आगे गौर करो, अल्लाह ताला इंसान को कैसे तख्लीक करता है। आयत 66-68 का टॉपिक है तख्लीक, बच्चे के माँ के पेट के मराहल की यहाँ दोबारा बात करके बताया कि वो रब जो तुम्हें पेट में रिस्क देता था माँ के, क्या आज बाहर आने के बाद नहीं देगा। असल में ये शिर्क का ही रद है। फिर हक के मुखालिफीन अजाब से नहीं बच सकते, 69 से 76 में ये बात बता के उनका बुरा अंजाम भी बता दिया कि देखो ये गलत काम करने वाले कभी भी नहीं बचेंगे। असल बात यह है कि इनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ आगे जाकर होना क्या है। और आखिर में फिर सूरत के अल्लाह के नबी को तसल्लियाँ दी जा रही हैं, आयत 77 से 78 में, फसबिर, सब्र कीजिए, बी पेशेंट, इन वादल्लाह ही हक, अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी जब लोग आपकी बात ना माने, जब लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम डालें, तो आप अल्लाह पे नज़रें लगाइए और फिर कायनात में चलती फिरती अल्लाह की कुछ कुदरतें जिसमें एक चौपाए, कैटल्स, मवेशी, अलनाम। 79 से 81 में क्या मैसेज दिया कि चौपाए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, सवारियाँ भी करते हो इन पे, इनका गोश्त भी खाते हो, इनके अंदर तुम्हारे बड़े नफ़े भी हैं, अपनी ज़रूरत की जगहों पे पहुँच जाते हो इन पे बैठकर और कश्तियाँ सवार किए जाते हो। इतना कुछ जब तुम्हें अल्लाह ने दिया है, तो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर गैरों के दर पे झुकोगे। इसीलिए फिर आगे मुशरिक कौमों के अंजाम से सबक हासिल करने की दावत है, 82 से 85 में। और इसी मज़मून पे सूरत गाफिर पूरी होती है कि वो लोग जो सारी ज़िंदगी इधर उधर भटकते रहे, फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, उनके काम ही नहीं आया जो वो करते थे, हालांकि वो कौन थे, कानू अक्सर मिनहुम वाशद्द कुव्वा, वो बड़ी सुपर पावर थी अपने वक्त की, कसरत थी उनकी, आबादियाँ बहुत थी, उनके मुल्क बहुत बड़े बड़े थे, आसारम फिलर, ज़मीनें खोद दी उन्होंने। तो क्या पता चला कि आज ही नहीं, हर दौर में अल्लाह ने लोगों को माल दौलत औलाद दी, लेकिन कम ही लोग थे जो उसको सही इस्तेमाल कर सके। और इसके बाद आगे है जी सूरत फुसिलत, जिसका दूसरा नाम हामीम सजदा। कुरान पाक में सजदा नाम की दो सूरतें हैं, वो अलिफ लाम मीम थी 21वें पारे में जो पढ़ा, जो रात को भी अल्लाह के नबी पढ़ते थे। ये वाली सूरत हामीम से शुरू होती है, इसलिए इसको हामीम सजदा सूरत कहते हैं। 1 से 46 आयात हम इसकी देखेंगे। कुरान की अजमत और मुनकरीन की हठधर्मी के मजमून से ये सूरत शुरू होती है। पहली 5 आयतें हामीम, ऐसी सूरतों को कहते हैं हवामीम। हवामीम कौन है? दीबाजुल कुरान है, हदीस में आता है। खूबसूरत सूरतें हैं, बहुत ब्यूटीफुल। इसमें कुरान की खूबियाँ और अल्लाह की तौहीद और नबी सल्लम का मुकाम पेश होता है। जिनको नहीं मानना होता वो कितना गलत जुमला बोलते थे, आयत 5 को हाईलाइट करना चाहें तो कर लें। जब नबी बुलाते थे ना तो नहीं सुनते थे। वकालु कुलूबुना फी यकीन्ना, कहते थे हमारे दिल तो पर्दों में है, जिस बात पे तू हमें बुलाता है हमको नहीं सुनेंगे, हमारे कानों में बोझ है और तेरे और हमारे बीच में एक हिजाब है, यानी आपकी तो हमें वेव लेंथ भी नहीं मिलती, आपका तो पता नहीं क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वी डोंट अंडरस्टैंड यू। अल्लाह कह रहे हैं डोंट वरी, इनसे बहस नहीं करो, फामल इन्ना आमिलून। फिर आगे कुरान हकीम की दावत है आयत 6 to 8 में, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। पहली बात, अल्लाह के नबी से जो अपना तारुफ कराया जाता है हमेशा ऐसे कराया जाता है। अब इनको कह दो मैं तुम जैसा एक बशर हूँ, हाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ है मेरे अंदर वो है कि मेरे पास वही भेजी जाती है, और वही का खुलासा ये कि ला हुकुम इला हूँ वाहिद, अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई नहीं, बस तुम सीधे रहो उसकी तरफ और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, और वईल है मुशरिकीन के लिए। यहाँ लफ्ज़ मुशरिक को गौर से देखिएगा, किसको मुशरिक है? हमारे यहाँ अमूमन लफ्ज़ मुशरिक काफिर नॉन मुस्लिम्स और डिसबिलीवर्स के लिए आता है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ कौन है? लिल मुशरिकीन। कौन से मुशरिकीन? अल्लज़ीना ला यूतूना ज़का। नोट कीजिए इस आयत का नंबर, ज़कात न देने वाले को यहाँ मुशरिक कहा गया, आखरत का कुफर या इनकार करने वाले को मुशरिक कहा गया। इसके बरक्स इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती लहुम अजरुन गैरु ममनून, ईमान लाकर अमल साले करने वाले के लिए एंडलेस रिवॉर्ड। आप कभी एक मिरर लेकर उसके सामने एक खास एंगल से मिरर दूसरा रखें तो मिरर्स की लाइनें बनी हुई दिखती हैं आपको। आप नेकी का कोई ऐसा काम कर जाए कि फिर आपके बाद वहाँ आपको प्रॉफिट आता रहे, ये है गैरु ममनून। फिर ज़मीन आसमान की तख्लीक की बात है 9 से 12 में, कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को कैसे कितने दिनों में पैदा किया। इसमें ख़ास तौर पे आसमान की जो तख्लीक है, अगर इस पर हम गौर करें ना तो 7 आसमान 2 दिनों में बनाए। 7 आसमान है, ये जो मैं देखते हैं ना इसके ऊपर 6 और हैं, और रिवायत में आता है कि इसके बीच में एक से दूसरी में 500 साल का फासला है। और ये आसमान तो गैसेस और धुआं है ना, ऊपर के आसमान एक पूरा सोने का है, एक चांदी का है, याकूत का है, पता नहीं आसमानों पे क्या। तभी तो मोमिन की रूह जब निकलती है वो इन्हीं मंजरों में खो जाती है। मोमिन को कितना मजा आएगा अपनी मौत के वक्त। तो अल्लाह ने क्या किया आसमानों में, उनके काम वही किए जिन्हें उनको अपॉइंट किए। इससे पता चलता है कि हमें भी अपने काम पता होने चाहिए। जहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होती वाजे, वहाँ साथियों में गलतफहमियाँ और मुगालते होते हैं। फिर इस तरह आसमाने दुनिया को चिरागों से सजाया, सितारे, और इनसे हिफाजत का काम लिया। इसके आगे अब कौमों के तस्करे आएंगे। गौर व फिक्र दिया गया कि इतनी बड़ी कायनात बनाने वाले रब को छोड़कर तुम दूसरों के पीछे भागोगे। तो कौम आद के तकबर से बात शुरू होती है आयत 13 से 16। अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, नबी की मुखालफत की, रसूल से झगड़े किए, अल्लाह को ना माना, और साथ ही साथ उनका दावा क्या था? हम बड़ी ताकत है, हुआ अशद्दु मिन्हुम कुव्वा। फिर उसके आगे कौम समूद है दूसरी, उनके अंधेपन की बात है आयत 17 से 19 में। ये कौन थे? अल्लाह कहते हैं फहदई ना हूँ, हमने उनको हिदायत दी थी, लेकिन फस्तहब्बुल, उन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधा रहना पसंद किया। आज भी लोग ऐसे ही हैं, इल्म के हिदायत के मौके खुले हुए हैं लेकिन नहीं नसीब में, तो अभी तक तो नहीं नसीब हुआ। दुआ कीजिए अल्लाह इस किताब से सबको जोड़ दे। फिर आंखों कान और खालों की गवाही है, अल्लाह ताला कहते हैं वकालु ली जुलूदिहिम लिमा शहीद तुम अलैना, अरे तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء, ہمیں تو آج اسی اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوا دیا. دیکھیں زبان کا ٹکڑا کیا ہے, ایک لوتھڑا ہے. ٹیپ ریکارڈر کیا تھی, سی ڈی کیا ہے, کیسے آپ کی میری آواز ایک دوسرے تک پہنچتی ہے. تو کل قیامت کے دن سکن بولے گی, ہاتھ بولیں گے, کان بولیں گے, اور یہ ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے, کیونکہ اللہ زبانوں پہ مہریں لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم, سورت یاسین میں ہم پڑھ کر آئے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ سپائز ہیں, یہ جاسوس ہیں. انسان اپنے اعضاء کی عدالت میں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا. اللہ ہمیں ان سے صحیح کام لینے والا بنا دے. پھر آگے 26 سے 29 میں تبلیغ قرآن سے دشمنی کا انجام, یعنی تمہیں اچھا نہیں لگتا قرآن کی تبلیغ, قرآن کی دعوت دینا لینا, تو ذرا دیکھو کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, اس کو ہائی لائٹ کریں, نہ سنو اس قرآن کو. وَلْغَوْا فِي, اور لف باتیں کرو اس میں, یا شور مچا دو اس کے ارد گرد. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, تاکہ تم غالب آ جاؤ. مکہ والے نبی کی قرآن کی محفلوں اور آپ کی تلاوت کی تاثیر سے لوگوں کو روکنے کے لیے اس طرح کے اوچھے کنڈے اختیار کرتے تھے. آج بھی لوگوں نے دنیا میں اتنی اٹریکشنز اور بیکاریات پھیلا دی کہ قرآن والوں کی بات نہ سنیں اور باقی چیزوں کو دیکھیں کیسے پمپی گلیمری سٹائل سے ہر وقت سنتے بھی اور سناتے بھی ہیں. پھر ان آیات میں قرآن پاک سننے کے کچھ آداب ہیں, اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں. پہلی بات ہے, قرآن سنتے وقت شور کرنے کی مذمت ہے. قرآن سنتے وقت غفلت اور گفتگو کی ممانعت ہے, باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ گھر کے کام کرنے کے دوران تلاوت چلا لیں, کوئی بری بات نہیں. بیچ میں فون آ گیا, پہلے اس کو بند کیجئے پھر فون اٹھائیے. بچہ پاس آ گیا, ماما 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 ماما, آپ کہتے ہیں اچھا. آپ اپنی اس ریکارڈنگ کو, اس لیکچر کو, آپ جو تلاوت یا جو بھی آپ سنتے ہیں اس کو پاز پہ کریں, بولیں جی بیٹا بولیے, تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہیں کہ قرآن بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح لگا ہے, لیکچرز چل رہے ہوتے ہیں پیچھے اور ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر بیچ میں سے دو چار چھ جملے چھٹتے ہیں, پھر سنتے پہ کہتے ہیں کیا کہا انہوں نے, ذرا پیچھے کروں, یہ تو کوئی مذاق ہے. آپ استادوں کو یہ تو نہیں کہتے ذرا بات پیچھے سے پھر کر دیں, رائے نا. تو یاد رکھیے آپ خود سے بھی سنتے ہیں نا گھر میں, تو بادب طریقے سے سنیں, پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا, ورنہ دل سخت ہو جاتا ہے. پھر سن سن کے وہ باتیں ایک وقت آتا ہے دل میں بھی نہیں آتی. پھر سر ایک اور ادب کیا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے وقت باتیں کرنا قرآن کو حقیر جاننا, اور اس کے بعد وہ خوبصورت آیت جس کو آیت استقامت کہہ لیں. استقامت میں قیامت ہے. کل تعلیمات دینی کا خلاصہ, اسلام کو اگر ایک نٹ شیل میں کوئی بند کرے تو وہ لفظ بنتا ہے استقامت. ایک صحابی نے بھی آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا, اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک بات ایسی بتا دیں جس کے بعد پھر میں دوسری نہ پوچھوں. تو آپ نے یہی کہا تھا, اللہ کی بات کہو, ثم استقم, پھر اس پہ قائم ہو جاؤ. ان الذین قالوا ربنا اللہ, یہ ہے جملہ سٹارٹنگ. ان آیت کی آپ تفسیر جا کر سن لیں, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پہ جم گئے, نازل ہوتے ان پہ فرشتے اور خوشخبریاں دیتے ہیں ان کو کہ خوف نہ کرو, غم نہ کرو, اور وابشیرو, خوشخبری دے دو, بالجنت اللتی کنتم توعدون, اس جنت کی جس کے تمہیں وعدے دیے جاتے تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا, ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی. اور ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے نفس چاہیں گے. ولکم فیہا ما تدعون, جو تم آرڈر کرو گے ملے گا, یعنی کہ اپنی پسند سے ہم تمہیں دے رہے ہیں, تم مانگو ہم تمہیں دیں گے. کیونکہ نزلم من غفور رحیم, مہمان نوازی ہے بخشنے والے رب کی طرف. تو اس میں خوبصورت جملہ دیکھیے, ربنا اللہ, اللہ میرا رب ہے. دو اللہ کی انتہائی خوبصورت شانیں اس جملے میں اکٹھی ہوتی ہیں, اللہ اور رب. کہنے اور استقامت اختیار کرنے والوں کی تائید فرشتوں سے ہوتی ہے. فرشتے نے خوف و غم سے نکلنے اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبریاں دیتے ہیں, اور فرشتے دنیا اور آخرت میں ان کے دوست بن جاتے ہیں. اور کیا چاہیے, عموماً جب ہم اللہ کی طرف آنے لگتے ہیں نا تو لوگ ہمیں چھوڑنے لگتے ہیں, اور ہمیں یہ بہت برا لگتا ہے, میری سہیلیاں چھوڑ گئیں, یا وہ مائنڈ کرتی ہیں, اب تو بچے بھی ایسے ہیں, کچھ بات کروں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, इंसान तन्हाई महसूस करता है, अल्लाह कहते हैं डोंट वरी, फरिश्तों की दोस्ती मिलेगी, तो लिहाजा अच्छी बात कहना ना छोड़ो। अगली आयत में ये पैगाम है, बेहतरीन बात किसकी है? दावत इल्लाह वाले की, जो अल्लाह की तरफ बुलाए। आयत 33 है, वमन अहसनु कौला मिम्मन दआ इल्लाह। इससे भी अच्छी बात किसी की हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, फिर अमल खुद भी अच्छे करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। तीन बातों में आज के दौर में किसी को भी अल्लाह की बात पेश करते हुए जो अपने लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं वो बताएं। नंबर एक, दुआ इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना है, जमातों, गिरोहों, फिरकों, उस्तादों की तरफ नहीं बुलाना, किताब की तरफ बुलाएं, कुरान की तरफ, हदीस की तरफ। मोमिन हर रंग से आज़ाद होता है। फिर दूसरी बात, तामीला सालेहन, जो दूसरों को कह रहे हो वो खुद भी तो करो। आज आप व्हाट्सएप पे वो मैसेज जो खुद भी नहीं पढ़ते सुनते आगे कर देते हैं और कहते चलो ना आज कितनी नेकियां कमा ली। नहीं, पहले आप खुद पढ़िए, अमल कीजिए, फिर भेजिए। और तीसरी बात, काल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, नोट करें लफ्ज़ मुस्लिमीन को, कोई नाम और है? कोई मसलक, कोई जमात, कोई फिरका, कोई गिरोबंदी, कोई जकड़बंदी, कोई भी नहीं है। तो आपका मेरा नाम मुसलमान है। और आगे फिर जब ये बात करेंगे तो बहुत सारे रिश्ते बदल जाएंगे। इसीलिए फिर दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का नुस्खा आयत 34 से 36 में है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, भलाई बुराई बराबर नहीं होती, ए दफा बिल्लती ही आसन। इसको नोट कर लें, बुराई का जवाब भलाई से दो, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दो, फूल से दो। होगा क्या? फैज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा, वो शख्स जिसके और तुम्हारे बीच में कल तक दुश्मनी थी कैसे हो जाएगा? कान्नहु वलीयुन हमीम, गहरा दोस्त हो जाएगा तुम्हारा, फास्ट फ्रेंड। हमीम कहते हैं खौलने को, गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर, यानी वो शख्स जिसके दिल में आपकी मोहब्बत जोश ले रही हो। हाँ, बात क्या है? वमा युलक्का, ये नहीं सिखाई जाती बात, इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक्का इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये इतनी बड़ी बात है कि नसीब वालों को ये तौफीक मिलती है क्या कि बुराई के जवाब में भलाई देना, और इससे दुश्मनियाँ दोस्तियों में बदलती हैं। बहुत बुरा लगता है बंदे को, लोग कहते हैं मैं क्यों करूँ, मैं को किसी से काम हूँ, मैं क्यों दबूँ? तो कवा इम्मा यन्ज़ग़न्नक मिनश शैतान, अगर शैतान आपको वसवसा दिलाए, आपके अंदर से हूँ हाँ निकलवाए, नज़ग़ुन, तो क्या करिए? फ़स्तईज़ बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो सुनने वाला और जानने वाला है। तो अल्लाह करे कि आप और मैं दावत इल्लाह में भी और बाकी चीज़ों में इस पे अमल कर लें। आगे बस पारे का एंड है, 37 से 38 में, मुजाहरे कुदरत को सजदा नहीं करो, अल्लाह को करो। किसी ने सूरज को सजदा किया, किसी ने चांद को किया, अल्लाह कहते नहीं सूरज और चांद को पैदा करने वाले को सजदा करो। और आयत सजदा है 38 में, और उसके बाद 39 में, ज़मीन को जिंदा करने वाला इंसान को भी दोबारा जिंदा करेगा, यानी मरने के बाद जीने की फिक्र ना करो। क्या तुम हर साल ज़मीन को 3-4 दफ़ा कभी आबाद, कभी सब्ज़, कभी ब्राउन नहीं देखते? आपकी गंदम, आपकी कपास, आपके चावल, कैसे वो मुख्तलिफ कैफियात से गुजरते हैं, तो मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने वाला क्या करेगा? इन अल्लज़ी यहयाहा लमुहयिल मौता, वो ज़िंदा करेगा मुर्दों को। और फिर अज़मत कुरान आयत 40 से 42 में, इन अल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी आयातिना, जो हमारी आयतों में इल्हाद करते हैं, मानी बदल देते हैं, मफहूम बदल देते हैं, वो नहीं छुपेंगे हमसे। असल बात यह है, किताब क्या है? ला याती हिल बातिलु मिन बैनी यदै, ये जुमला नोट करें। इसके तो आगे पीछे से भी बातिल गुजरता नहीं है, और ये तो बड़ी प्यारी किताब है हकीम और हमीद की तरफ से। और फिर आखिरी आयात नबी सल्लम की दिलजोई की है, 43 से 46, जिसमें आम तौर पे अंदाज यही होता है कि जो नहीं मानते आप उनको छोड़ दीजिए और आप अपना काम करते रहें। ये बातें हैं, ये इनको अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही, लेकिन ईमान वालों के लिए हुदा व शिफा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पे चलते हुए हमें हक बात कहने की तौफीक दे, और गलत बातों से हम दूर हो जाएं। मन अमिला सालेहन फली नफसी, जो अमल साले करेगा उसके अपने नफ्स के लिए है, व मन असा, और जिसने बुरे काम किए, फालैहा, तो उसके अपने अगेंस्ट है, क्योंकि वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल अबीद, आपका रब अपने बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं। यह लफ्ज़ अबीद है, गैर आकिल, वो जो मजबूरी से भी अब्द बने हुए, यानी इंसान तो इंसान है, अल्लाह तो किसी बेजान या सूरज चांद सितारों जैसी मखलूक पे भी जुल्म नहीं करता। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।